والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے فضیلت دی بعض کو بعض میں رزق میں. رزق کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق ہے. مال تو ہے ہی رزق، ٹھیک ہے وہ تو ہے ہی رزق، کھانا پینے کو بھی ہم رزق کہتے ہیں وہ بھی رزق ہی ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس جو صحت ہے وہ بھی رزق ہے، جوانی رزق ہے، زندگی وقت جو آپ کو ملا ہوا ہے، جو آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں وہ سب رزق ہیں. تو اللہ تعالیٰ بعض کو بعض میں فضیلت دیتا ہے. دیکھیں نا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب، کسی کو صحت مند، کسی کو بیمار، کسی کا بہت بریلینٹ بنا دیا. کوئی کم عقل ہے، کوئی بہت حسین ہے، کوئی نہیں ہے اتنا. تو بعض کو بعض میں فضیلت دے دی رزق میں، کسی کے پاس اولاد ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. پھر اس سے ایک مثال دی گئی. ایک تو پہلے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس دنیا کے اندر یہ جو اوپر نیچے ہے نا، کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے، اس کو غیر فطری طریقے سے برابر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کیپٹلزم ہے یا سوشلزم ہے اس میں وہ کہتے ہیں سارے برابر ہو جائیں. نہیں، اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ سارے ایکول بالکل ہو جائیں، یہ غیر فطری طریقہ. ہاں، اسلام کہتا ہے کہ سب کو اپرچونیٹی ضرور ملنی چاہیے کہ اپنی اپ لفٹ کریں، چاہے وہ کوئی غلام نوکر ہی کیوں نہ. آپ دیکھیں ان ملکوں کے اندر، میں نام نہیں دیتی، ایک پہلے کینڈیڈیٹ پریزیڈنٹ کے لیے کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ میری ماں جو تھی وہ میڈ تھی، گھروں میں صفائیاں کرتی تھی. لیکن دیکھیں وہ پریزیڈنٹ کے لیے کھڑا ہوا، جیتا نہیں، لیکن اب دیکھیں ایک بندہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. تو ایکول اپرچونیٹی سب کو ملنی چاہیے، لیکن ایسے نہیں کر سکتے کہ غیر فطری طریقہ ہو، جس کے پاس مال ہے اسے مال چھین کے کہیں ساروں کو برابر کرنا، اس سے سب کو ایکول وہ مال ڈیوائڈ کر دیا جائے اور سب کو ایک ہی سطح پہ لا دیا جائے. سب کے ایک جیسے گھر ہیں، سب کے ایک جیسے کام ہیں، سب کے ایک جیسی چیزیں ہیں، سب کا ایک جیسا سٹیٹس ہے جی، اس لیے کیونکہ سب کو برابر کرنا. ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر. کیا کہیں امیر بھی ہوگا، کوئی غریب بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلتیں بعض کو بعض کے اوپر اس لیے دی ہیں تاکہ نظام چل سکے. ہاں یہ ضرور کہا گیا اپنے معاشرے میں کمزوروں کا خیال رکھو. جاتے جاتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی کہ غلاموں کے بارے میں اللہ سے کرنا، اپنے غلاموں کا خیال کرنا. ٹھیک ہے، تو اب ایک مثال بھی دی گئی. یہ بات سمجھ آ گئی ہے، فضیلت بعض کو بعض کے پر دی. اب ایک مثال دی گئی، فَمَن الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے، ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو فضیلت دیے گئے ہیں وہ اپنے رزق کو لوٹا دیں ان کی طرف جن کے وہ مالک ہیں، ان کے دائیں ہاتھ، یعنی ان کے غلاموں کی طرف. ماں ملکت ایمانوں کو مطلب غلام. فہم فی سبا، تو وہ ایک جیسے ہو جائیں، ایک جیسے برابر ہو جائیں. اب دیکھیں نا کہ یعنی ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جو امیر ہے، مثال کے طور پر کسی پاس ملین ڈالر ہے، تو وہ ہاف ا ملین اپنے غلام کو دے دے، نوکر بھی نہیں غلام کو، جو کوئی اختیار نہیں رکھتا، جو بالکل یعنی اس کے انڈر ہے، اس کو ہاف دے دے اور ہاف خود رکھ لے. کبھی ایسا دنیا میں آپ نے دیکھا؟ کبھی بتائیں کوئی ایسی مثال دیکھی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں دیکھی. تو پھر کہ یعنی بالکل برابر کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ایسی مثال دیتے ہو؟ کیسے؟ اس سے سمجھائی گئی توحید. وہ چیزیں جو اپنے لیے تو کبھی آپ پسند نہیں کرتے. کون سے لوگ ہیں جو اپنے نوکروں کو بھی جائیدادوں میں کہیں گے جی جی میرے دو گھر ہیں، ایک گھر میں تجھے دے دیتا ہوں، ایک خود رکھ لیتا ہوں، تو ہم دونوں برابر ہو جاتے ہیں. کون ایسے کرتا ہے؟ اپنے لیے تو تم ایسا پسند نہیں کرتے، اور اللہ کے لیے پسند کرتے ہو کہ تم اپنے جیسوں کے ساتھ بھی نہیں بانٹتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو کسی طرح بھی خالق کے برابر نہیں ہو سکتی، تم تو پھر بھی انسان ہو نا، دونوں، تمہارا غلام بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، پھر بھی تم اس کو اپنے برابر نہیں لاتے، اور تم اللہ کے غلاموں کو، اس کی مخلوق کو اس کے برابر لے جاتے، اس کے برابر کے اختیارات دے دیتے کہ یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی عطا کرتا ہے، یہ بھی رزق پر مجھے پہنچاتا ہے، یہاں سے بھی مجھے اولاد ملتی ہے. تم کیوں نہیں اپنے نوکروں کو برابر کر لیتے؟ ان کو دے دو نا آدھا مال اور آدھا خود لے لو اور برابر ہو جاؤ، کیوں نہیں کرتے؟ لیکن اللہ کے لیے وہ کام تو کرتے ہو. خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کا تو کوئی میچ ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں. کہاں وہ خالق، کہاں ہی مخلوق،
तुम उठा के उनको वो इख्तियारात का मालिक समझ लेते हो कि ये इसको ये भी इख्तियार है, ये भी इख्तियार है, शिफा यहाँ से मिलेगी, उसके दर से मिलेगी, वो साईं बाबा, वो फलां, वो गुरु, वो गौसे पाक, वो दाता, वो फलां, कितने नाम रख लिए तुमने, जबकि ये इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह के पास है, जिसको चाहे अता करे, जिससे चाहे वापस ले। तो तेरे मुल्क का मंतशाओ तो आइज मंतशाओ तो दिल मंतशाओ भी यदि कल खाई इन्ना कला खुली शाह इनका दी, तो तुमने उठा उठा के किसी को कभी किसी को दे दी, कोई किसी को चीज दे दी। हम तो ज्वाइंट अकाउंट भी नहीं बनाते अपने नौकर का और अपना ज्वाइंट अकाउंट बना ले, आओ जी तुम भी हमारे साथ शरीक हो जाओ, फिर देख लो वो सारी बातें ना, पहले भी हमने बात की थी ना पिछले सबक में कि अपने लिए वो बातें पसंद नहीं करते, वो अल्लाह के लिए करते। मसलन औलाद है, अपने लिए कोई पसंद नहीं करेगा कि कोई किसी की औलाद को आपके साथ डाल दे, कि कोई कह दे कि ये इसका बेटा है, नहीं करेगा कोई पसंद, कि हराम की मतलब उसके फील होगा कि ये मेरे ऊपर हराम का इल्जाम लगा दिया। और अल्लाह ताला के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाते हैं कि उसने औलाद ली थी, जबकि वो उसकी औलाद नहीं है। आफा भी नियामत इल्लाही, क्या भला अल्लाह की नेमत से का यह जहादून वो इनकार करते, अल्लाह की नेमत का इनकार करते, यानी अल्लाह ताला की नेमत का ताल्लुक इससे कैसे है कि शिर्क करके इंसान असल में अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को किसी और के नाम मंसूब कर देता, कभी बुतों के नामों पे, कभी और अल्लाह की किसी मखलूक के नाम पे उनके साथ मंसूब करते हैं। रिस्क अल्लाह ने दिया है और कहते हैं जी फलां ने हमें रिस्क दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक उर्स होता था हमारे शहर में, उनको कहते थे दाता साहब, दाता के नाम भी गलत है, हजरत अली हजवेरी कहना चाहिए उनका जो असल नाम है। तो उस दिन दूध नहीं मिलता था पूरे शहर में, क्योंकि सारे दूध वाले जो वहां पे जाके दूध देते थे लोगों को, क्योंकि वो कहते थे हमारी भैंसे दूध देना बंद कर देंगी अगर हमने उर्स पे जाके ना दिया, सूख जाएगा इनका दूध। यानी तुम सोचते हो कि इनके उससे आता है हमें दूध, इनके उससे हमें रिस्क मिलता है। इस तरह और बेशुमार बातें, लोग अपने बच्चों के नाम पीरा दित्ता रख लेते, पीरों ने दिया था, गुलाम रसूल रखते थे, रसूल का गुलाम अब्दुल्ला अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद नाम है, अब्दुर्रहमान सबसे ज्यादा पसंद है, और ये गुलाम किसी और के बन जाते हैं। तो नेमतों से फायदा उठाते हैं, वो नेमतें जो अल्लाह ने दी हैं, दिन और रात फायदा उठाते हैं, लेकिन शुक्र किसी और का अदा करते हैं, झुकते किसी और के आगे हैं, नेमत को किसी और के नाम लगाते हैं। लेकिन नाशुक्री वाली जो जिंदगी है ना, वो नेमतों के इनकार वाली जिंदगी है। नेमत का एतराफ पता है क्या है? शुक्र। और नेमत का इनकार नाशुक्री है। वल्लाहु जाला लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, और अल्लाह ताला ने बनाए तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने नफ्सों से जोड़े। अजवाज का मतलब वैसे तो जोड़े होता है, लेकिन यहां पे बीवियां होगा, इसलिए कि लकुम है ना, लकुम तुम्हारे लिए मुजक्कर का है, तुम्हारे लिए इसका मतलब बीवियां बनाई। और जाल लकुम मिन अजवाजिकुम, और बनाए तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों में से बनीन व हफदतन, बेटे और पोते। मिन अनफुसिकुम पहले तो आया तुम्हारे अपने नफ्सों में से, यानी तुम्हारी जैसी तुम्हारी जिन्स की, ऐसी नहीं कि इंसान है मर्द और जिन औरतों से शादी कर रहा या जानवरों में किसी से शादी कर रहा और उससे अब उसके आगे नस्ल बन रही, ऐसा नहीं, बल्कि जो उसकी आगे नस्ल चलती है उसकी जैसे जौत से चलती है, उसकी यानी जिन्स के जौत से चलती है, जिससे फैमिली सिस्टम आगे बढ़ता है। और अजवाज जो है ना वो पेयर को भी कहते हैं, उसका पेयर है, उसका स्पाउस, उसकी बीवी यहां पे खास तौर पे तुम्हारी नौ में से ही बनाई, इंसानों में से ही बनाई, कि इंसान अपने जो ये जिंसी जज्बात है वो उनकी तस्कीन के लिए एक इंसान से ही अपनी जरूरत पूरी करे, और दूसरी ये कि अपनी बीवी से। लेकिन आज इंसान कहां से कहां पहुंच गया, उसने कभी जानवरों को इस्तेमाल किया, कभी एक इंसान अपनी जेंडर के इंसान से अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, जबकि यहां पे कहा गया वह जाला लकुम मिन अजवाजिकुम बनीना व हफदा, तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे बेटे और पोते दिए। इसका मतलब है कि यहां पे वो बीवी मुराद है, वो जोड़ा मुराद है जिससे औलाद पैदा होती है। जब एक जैसे औरत औरत का जोड़ा नहीं बन सकता क्योंकि उससे औलाद नहीं हो सकती, मर्द मर्द का जोड़ा नहीं बन सकता उससे औलाद नहीं हो सकती, इसका मतलब जोड़ा सिर्फ मर्द और औरत का बन सकता है क्योंकि उससे आगे बेटे हैं और पोते हैं। मजा आ गई? यहां पे नफी हो गई कुरान के अंदर कि ऐसा कोई भी रिलेशनशिप जिसको ये लोग कहते हैं ना कि नहीं ये तो नेचुरल है, नहीं ये तो साबित है, और उसको जबरदस्ती से कुरान से साबित करने की कोशिश करते हैं। यहां पे देख ले अजवाज किसको कहा गया, अगर जोड़ा बन सकता होता मर्द और मर्द का तो फिर उससे कैसे फिर बेटे और आगे औलाद पैदा होती। और यहाँ पे बनीन का लफ्ज आ रहा है, बनीन वैसे बेटे के लिए कहते हैं लेकिन बनाई अपनी इमारत को कहते हैं, बुनियान भी आपने इमारत के लिए पढ़ा होगा, बुनियादों के लिए। तो औलाद चाहे लड़का हो या लड़की वो सब ही इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, सारी औलाद के लिए। इंसानों को कहा जा रहा है आपको बीवियां तुम्हारे अपने ही जिन्स में से दी गई ताकि तुम उनसे शादी करो, उनसे रिश्ता ताल्लुक कायम करो, और फिर उससे औलाद अल्लाह ताला ने अता फरमाई। जब आप देख लें क्या उन गैर फितरी अननेचुरल रिलेशनशिप से कभी औलाद होती है, इसका मतलब वो नहीं है जौज, वो जोड़ा बन ही नहीं सकते। और आजकल इसका बहुत चूंकि शोर मचा हुआ है, ढंडोरा है कि भाई ये भी जोड़े हैं और इनको भी जोड़ा समझा जाए और इनकी भी शादियां हो रही हैं और इनके भी बाकायदा उनको लीगलाइज करने के लिए पहले जहनों को तैयार किया जाता है, उसके बाद ही लॉज भी बनते हैं। तो पहले जहनों में ये बात लाई जाती है कि इट्स ओके, ये भी ठीक है। कहां से कुरान से साबित करेंगे कि ये भी ठीक है? मर्दों को जन्नत में भी हूरें दी गई हैं, मर्दों जैसे मर्द नहीं दिए गए। तो ये अगर ऐसी ही अच्छी चीज होती या ऐसी ही नेचुरल चीज होती तो फिर इस तरह से ही कर दिया जाता कि जो मर्द है वो मर्द के साथ ही जोड़ा बना ले। तो अब यहां पे कहा गया वजाला लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफदा, तुम्हें उनसे औलाद दी गई इन बीवियों से। अब देखें यहां पे औलाद की निस्बत उनकी माओं की तरफ की गई, क्यों? इसलिए कि ठीक है आदमी का भी हिस्सा है औलाद के पैदा करने में, उसका स्पर्म है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो पूरा प्रोसेस है ना, उसके अंदर मेजर रोल माँ का होता है। उसके पेट में पल रहा है बच्चा, उसके खून से, उसकी ताकत से, जो सारी न्यूट्रिशन है वो सब माँ का ही रोल है उसमें। अगर बाप का हिस्सा ही हो सिर्फ तो ये सिस्टम चल नहीं सकता, वहीं रुक जाएगा, फिर वो इंसान नहीं बन सकेगा, कोई काबिले जिक्र चीज ही नहीं है वो, ना उसको कोई औलाद कहता है, वो तो हकीर पानी का कतरा है। तो इस सारे प्रोसेस में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा हिस्सा मां का है। तो ये नहीं फरमाया, देखिए नोट करें यहां पे, ये नहीं फरमाया तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां बना दी और औलादे बना दी, इससे ये भी तो कहा जा सकता था बीवियां बनाई और औलादे बनाई, दोनों ही बनाई ना, नहीं तुम्हारी बीवियों में से तुम्हें औलादे दी। अरे एक बीवी की अहमियत पता चलती, एक औरत जो किसी आदमी के घर पे जाती है उसका मकाम पता चलता है कि अल्लाह ने इसके थ्रू तुम्हें औलाद की जैसी नेमत दी है, इसको जरिया बनाया। वो लोग जो अब बीवियों को बहुत ही नीचा और कम कर देखते हैं, ये तो पाँव की जूती है ऐसी, इस तरह की तो कोई चीज भी नहीं यहाँ पे कुरान में आई। या जो खवातीन सोचती है नहीं जी इस्लाम ने तो हमें कोई हकूक ही नहीं दिए, कोई ऐसी नहीं बात की, पता नहीं हमें कितना नीचा कर दिया। मर्दों को भी कहा गया देखो तुम्हारी नस्ल अगर चलती है ना तो इसके जरिए चलती है, ये तुम्हें पैदा करके देती है औलाद। तो इस नेमत को याद दिलाया गया कि बीवी भी एक नेमत है, क्योंकि इस नेमत के जरिए तुम औलाद पाते हो। एक तरफ सुकून का जरिया और एक तरफ औलाद का देने का जरिया। और ये भी समझ आ गई, जोड़ा ऑलवेज ऑपोजिट जेंडर का होगा, इसलिए कि तभी औलाद हो सकती है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें यहां से समझ आ गई हैं, सेम जेंडर जोड़ा नहीं बन सकते। ये तीसरी चीज हमें यहाँ पे मां की भी अहमियत का पता चला कि औलाद, ऐसे तो वो कहते हैं औलाद तो बाप की जी होती है, माँ की तो कुछ ऐसे कुछ है ही नहीं। नहीं, माँ का बताया गया कि उससे ही औलाद है, उसी से औलाद है। पैरों तले जन्नत माँ की है, बाप के नहीं है। तो ये नहीं कोई कह सकते बस मेरी ही है, तुम्हारा तो कोई हक ही नहीं, क्योंकि कुरान औलाद को माओ की तरफ मंसूख करता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा कि बाप की तरफ मंसूख किया जाए, तुम्हारे लिए है बस तुम्हारे। कुरान कहता है तुम्हारे लिए बीवी बनाई, दोनों शामिल हो मगर औलादें तुम्हारी बीवियों से आई, मिन अज़वाजिकुम। और हफदा, इसको भी जरा गौर कर लेते हैं, इसमें औलाद की औलाद भी आ जाती है, पोते पोतियां सारे नवासी नवासी सब। मगर अगर इसके रूट को देखें ना, हफादा जैसे मैंने आपको बताया कि इसका इसके अंदर मतलब है फुर्ती दिखाना, तेजी दिखाना। हाफिद उसको कहते हैं, खिदमत गुजार को, है ना। एक दुआ पढ़ पढ़ते हैं, इलैक नसअ व नहफिदु व नरजू रहमतका नख्शा अज़ाबका, ये वाला पढ़ते हैं ना। तो नहफिदु जो हम कहते हैं तो क्या मतलब है, इलैक नसअ, हम तेरी तरफ दौड़ धूप करते हैं, तेरी इबादत के लिए हम फुर्तियां दिखाते हैं, सरगर्मियां दिखाते हैं। तो इमाम तबरी ने इसको कहा कि हफदा से मतलब है खिदमत गुजार, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए खिदमत गुजार बनाए, और जो आगे औलाद की औलाद भी है वो भी खिदमत करती है, इसमें वो भी शामिल है, और इसमें गुलाम नौकर चाकर भी शामिल है। ठीक है, तो ये दोनों ही इसके अंदर बातें आ गई। और जो भी मुआविनीन, जो भी हेल्पर्स हैं उसकी जिंदगी का निज़ाम आगे बढ़ाने के लिए, वो सब इसके अंदर शामिल होगा। और बाज ने कहा कि ये बनीन ही की सिफत है, कि बनीन की आगे सिफत बयान की गई वाह के साथ, कि बनीन है जो औलाद है वही हफादा है, यानी वही तुम्हारी खिदमत गुजार है, कि औलाद खिदमत करती है तुम्हारे लिए, अल्लाह ताला ने बीवियां दी जिससे तुम्हारी औलाद हुई जो तुम्हारी खिदमतें करने वाली। इसका मतलब औलाद का काम है कि वो अपने वालदैन की खिदमत करे। और बाज ने कहा, बाज तफसीरों में ये भी है कि हफादा से मतलब है दामाद और बहुएं, और खास तौर पे दामादों की बात की गई, यानी दामाद भी काम में मुआविन होते हैं, क्योंकि ये अब बच्चों के आगे स्पाउसेस हो गए ना बेटियों के, और इसी तरह बहुएं भी। तो इमाम कुर्तुबी ने कि ये लिखा है कि बच्चों की औलादें और बेटियों के खामिद और ये सब इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, और इन सब का ये है कि वो भी खिदमत करें। अलबत्ता इब्ने अब्बास ने चूंकि इसे पोते और पोतियां मुराद ली हैं, तो इसलिए ज्यादातर आप तर्जुमों में पोते पोतियां देखेंगे, लेकिन असल हफदा का मतलब नहीं है पोते पोते, इससे मुराद है, लोग भी माना तो वही है, मैंने आपको जैसे बता दिया। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये नेमतें दी हैं ना तुम्हें आगे से आगे। देखें जब इंसान की औलाद होती है, वो औलाद बड़ी हो जाती है, तो फिर अब ये फिक्र पड़ जाती है इनके भी बच्चे हो जाए, अब उनके लिए दुआएं इंसान करने लगता है कि अल्लाह इनको भी औलाद की नेमत दे दे। लेकिन अल्लाह ताला ये नेमतें जब देता जाता है, आगे इंसान की नस्ल बढ़ती है। अब देखें दो थे, उन्होंने जिंदगी का सफर शुरू किया, फिर उनसे उनके मसलन चार पांच बच्चे हुए, फिर आगे उनसे आगे नस्ल हुई, तो वो कैसा बड़ा सा खानदान बन जाता है। और कभी आप देखें कि एक दादा दादी या नाना नानी के इर्द गिर्द सारे जमा हुए हो, तो वो दो कहां वो दो और कहां वो 30-40 बन जाते हैं। तो इंसान उनको देख के खुश होता है, उसको उनको देख के तमन्नाई आती है। तो ये भी नेमते हैं तुम्हारे लिए ना, लिहाजा इनको नेमते गर्दाने। इसलिए अल्लाह ताला ये सारी नेमतें याद दिला के इंसान को बता रहा है, देखो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए क्या क्या नेमतों के अंबार लगाए हैं, कैसी कैसी नेमतें तुम्हारे इर्द गिर्द हैं जो तुम्हारे दिल खुश कर देती हैं। फिर अगर खिदमत गुजार हैं तो वो भी एक माना है, तो खिदमतें कर रहे हैं। और बेटियां हैं, अगर हाफदा से मुरादबाज ने बेटियां भी ली कि बेटे भी और बेटियां भी दी, और बेटियां भी चूंकि मतलब इसका खिदमत गुजारी है, तो बेटियों में बहुत ज्यादा खिदमत गुजारी होती है। तो ये भाग भाग के अपने दादा नानी इनके लिए भाग भाग के दौड़ दौड़ के काम करते। वरजा का कुमिनत तो ये बात, और इसमें रिस्क दिया तुमको पाकीजा, उसने रिस्क दिया तुमको पाकीजा, यानी अल्लाह ताला ने देखो तुम्हारे लिए रिस्क का भी इंतजाम किया जो पाकीजा रिस्क है। इसका मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं, जैसे मैंने आपको बताया रिस्क में बहुत सारी चीजें शामिल है। ये अकल समझ है ना, ये भी रिस्क है, ये भी रिस्क है। जो आपको अकल है, जो आपको बात करने की सलाहियत है, देखने सुनने की सलाहियत है, सारे रिस्क है जो कुछ भी अल्लाह ताला ने अता किया। माल दौलत के अलावा जितनी भी चीजें हैं सब रिस्क है। पाकीजा चीजों में से तुम्हें रिस्क दिया, खाने को पाकीजा चीजें दी। सुभान अल्लाह, इंसान कैसे इन नेमतों से अपनी नजर चुरा सकता है, कैसे भूल सकता है नेमत देने वाले को। ऐसे लगता नहीं है आपको, जस्ट अपने आप को ना इन आयात के अंदर गुम करके देखें और सोचें कि ऐसे आपको लगता नहीं जैसे आप नेमतों के अंदर घिरे हुए हैं, आपके हर तरफ उस रब की दीवी नेमते ही नेमते हैं, नेमते ही नेमते हैं। क्या फिर भी इन नेमतों को देख के वो याद नहीं आता कभी भी? बच्चों के साथ खुश हैं, उनके साथ मजा कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और एक हैप्पी फैमिली हुई है, टुगेदर है, हंस खेल रहे हैं, कभी भी नहीं याद आता कि औलाद मुझे किसने दी और इस औलाद से आगे औलाद दे दी मुझे, कि मुझे एक से कितने दो थे हम और उससे कहाँ से कहाँ तक बना दिया, कहाँ से कहाँ तक फैला दिया। कोई किसी मुल्क में बैठा है, कोई किसी में बैठा है, और देखो वो कहाँ से सफर शुरू हुआ और कितने सारे बन गए, तुम्हें रिस्क दिया। तो क्या अल्लाह फिर भी नहीं याद आया? क्या इन्हीं चीजों में खो गए? कभी सोचा नहीं? कभी तो सोचने का वक्त आना चाहिए, कभी तो दिल में ख्याल आना चाहिए, ये कभी भी नहीं आता। आफा बिल बातिल युमिनून, क्या फिर बातिल पे तो तुम ईमान रखते हो? वो भी नियामतिल्लाही हुम यकफुरून, और वो अल्लाह की नेमतों का इनकार करते। बातिल के ऊपर ईमान और अल्लाह की नेमतों से का इनकार मतलब क्या है? कि यानी शैतान के ऊपर ईमान, शैतान की बातें सुनना, शैतान की इताअत करना, उसके फरमा बरदारी में लगना, और अल्लाह ताला की नेमत उसका इनकार कर देना, यानी उसको किसी और के नाम मंसूब कर लेना। यहां से मिला, वहां से मिला, शुक्र करने की बात आए तो औरों की तरफ बढ़ना। आप भी देखें औलाद के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, जिनके पास औलाद नहीं होती कोई दरगाह नहीं छोड़ते, फिर कभी सितारों की पूजा करने लगते हैं, कभी बुतों की पूजा करने लगते हैं, कभी औलिया अल्लाह की पूजा करने लगते हैं, कभी किसी मजार, कभी किसी मजार, कभी कहीं धागा, कभी कहीं चादर, कभी कहीं देगे। क्या हो गया? बातिल पे तुम्हारा यकीन है और अल्लाह ताला की नेमत का इनकार। फिर जब मिल जाती है तो फिर शुक्र भी वहीं जा जाके अदा करते हैं। कुफारे मक्का तो करते ही थे ऐसा, आज मुसलमानों का क्या हाल है? ईमान अल्लाह पर और शुक्र किसी और का, ये अल्लाह की नेमतों से कुफरान है। इसीलिए जब आपको किसी इंसान से भी कोई खैर मिलती है ना, पहले اللہ کا شکر ادا کریں، پھر ہاں انسان کا بھی کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا، ضرور کریں، یہ نہیں آپ کو کوئی کہتا کہ آپ کبھی کسی کا شکریہ ہی نہیں ادا کریں، لیکن لوگوں میں ایسے نہ کھو جائیں کہ یہی بھول جائیں کہ کوئی اور ہے ذات جس نے اس کو ذریعہ بنایا، وہ ذات اس کو ذریعہ نہ بناتے تو یہ میرے کوئی کام نہیں آ سکتا تھا، اس کو نہ بھولے، ہر نعمت عطا کرنے والا وہ رب ہی ہے، اس کو چھوڑ کر یہ سمجھے کہ مجھے تو اس نے دیا، کیونکہ آپ کو وہ ظاہر میں نظر آتا ہے، اور رب کو بھول جائیں یہ نہ شکری ہے، اور ہر نعمت پہ ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم شکر ادا کریں نعمت کو دینے والے کا، ہر نعمت، اور اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہم تو گن بھی نہیں سکتے، کیسے شکر ادا کریں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں کلمہ دے دیا الحمدللہ کا، یہ الحمدللہ بولو، حمد ساری تعریف جس میں شکر کے بھی جذبات ہیں وہ صرف اللہ کے لیے، اور تمام کی تمام تعریف، تو اس لیے حمد کسی اور کی نہیں ہو سکتی، صرف اللہ کی ہو سکتی، اس لیے کسی کو نہ کہیں یہ میرے مائی باپ ہیں، یہ عطا کرنے والے ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں، اسی کی تعریفیں اسی کے گن گائے اور اللہ کو بھول گئے، سبب کا ٹھیک ہے شکریہ ادا کیا، لیکن مسبب الاسباب اللہ ہی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا جو نہیں مالک کسی چیز کے بھی رزق میں سے، آسمانوں میں اور زمین میں کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ طاقت ہی نہیں رکھتے، وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے، ان سے جا کے مانگتے، ان کی عبادت کرتے، عبادت کیا چیز ہوتی، پہلے تو من دون اللہ کی بتائیں، اکثر تفسیروں میں آپ کو نظر آئے گا جو بعد میں لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے کہ من دون اللہ میں وہ کہتے ہیں نہیں جی بس بت مراد ہے اور کوئی نہیں، ہم مجھے بتائیں کیسے، یہاں میں بتوں کی تو بات نہیں ہوئی، بتوں کے لیے بھی الگ ورڈ ہے، من دون اللہ میں کون آتا ہے، آپ اس کی ایک صرف ایک میں آپ کو ایگزامپل یا ایک اس کی دلیل دے سکتی ہوں کہ من دون اللہ میں ہر کوئی آتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اینڈ میں جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ تم نے کہا تھا لوگوں کو مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا، من دون اللہ مجھے اور میری ماں کو رب بنا لو، من دون اللہ میں کس کو شامل کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں، اس کا مطلب من دون اللہ میں سب شامل ہے، جو بھی اللہ کے سوا ہے وہ من دون اللہ ہے، چاہے وہ کوئی بت ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، کوئی پیغمبر ہے، کوئی اولیاء اللہ ہے، فرشتے ہیں، ستارے ہیں، جو بھی ہے وہ من دون اللہ ہے، اللہ کی ذات کے سوا، اللہ کی ذات کے علاوہ جو کوئی بھی ہے، چاہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں ہے، وہ مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے اور اللہ ایک ہی ہے، اللہ دو نہیں ہے، سمجھ آئی بات، تو من دون اللہ میں تو سب کو ہی آ جاتا ہے، صرف بت تھوڑی ہے، ہر کوئی من دون اللہ ہے، من دون اللہ کا بتایا کہ کسی من دون اللہ کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کسی من دون اللہ کی کوئی ملکیت نہیں ہے آسمان اور زمین میں، کوئی نہیں ہے جس کو ہم سوچیں کہ اس کے پاس ملکیت ہے رزق کی، اس کے پاس ملکیت ہے شفا کی، جی اس کے در پہ چلے جاؤ آپ ٹھیک ہو جاؤ، اس کے در پہ چلے جاؤ آپ کو اولاد مل جائے گی، اس کے در پہ چلے جاؤ آپ کے کام بن جائیں گے، آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی، فلاں کے پاس جاؤ، وہ تو لا یملک لہم رزقا، ان کے پاس کوئی ملکیت ہے ہی نہیں رزق کی، وہ مالک ہے ہی نہیں رزق کی، آپ کو کیسے دے سکتے ہیں، رزق میں کیا کیا شامل، ہر چیز رزق ہے، تو کسی چیز کی بھی ان کی ملکیت نہیں ہے، کیوں ان سے مانگتے ہو، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، اور عبادت میں دو چیزیں انتہائی محبت اور انتہائی عاجزی، ذلت اور پستی کے ساتھ، تو کیوں ان سے انتہائی محبت اور کیوں ان کے سامنے ذلت و عاجزی، کیوں ان کے سامنے جھکتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ سجدے کر رہے ہوتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں قبروں کے آگے جا کے، تو یہ تو عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے، بلکہ مخل عبادت ہے، دعا تو عبادت کا بھی مغز ہے، پھر ان کو سجدے کرنا، ان کے آگے دعائیں مانگنا، ان کو سمجھنا کہ یہ ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، یہ مالک ہیں، ये सब शिर्क की किस्में अल्लाह ताला पूछते हैं कि वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा की इबादत करते हैं जिनके पास कोई मिल्कियत है ही नहीं, ना आसमानों में किसी चीज की मिल्कियत है ना जमीन में किसी चीज की मिल्कियत है, तो कोई ताकत ही नहीं, बेताकत से जाके मांग रहे हो। और कितनी जगह कुरान में हमें बताया गया कि सारी मिल्कियत अल्लाह ही की है, मालिक वो है, इख्तियार उसका है, और ये तो इतने बेइख्तियार हैं कि अगर मक्खी भी इनसे कुछ ले जाए तो ये उससे भी कुछ छीन के नहीं ला सकते। मुर्दा तो मुर्दा है, बुत तो बुत है, जिंदा के सामने से भी मक्खी कुछ ले जाए वो भी नहीं ला सकते, तो फिर कैसे कोई खुदा हो सकता है, कैसे कोई खुदा का शरीक हो सकता है, कैसे कोई किसी के काम बनाने की ताकत रख सकता है, चाहे वो कृष्णा है, चाहे वो लक्ष्मी देवी है, चाहे वो गौस है, चाहे वो पैगंबर है, चाहे वो कोई दाता है कहते हैं, चाहे वो कोई कलंदर है, कोई भी है। अब तौहीद और कैसे सिखाई जाए, अल्लाह ताला हमारे अकीदे को दुरुस्त फरमा दे कि यानी बंदों के हाथों में जो उसकी मखलूक है उसके हाथों में इतना इख्तियार समझते, अल्लाह का हक इनको दे देते, वाकई इंसान ने अल्लाह ताला की कदर ही नहीं पहचानी, जैसे उसका हक है इबादत करने का वैसे कभी नहीं कर सकता कोई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस में आती ना आपकी दुआ कि अल्लाह मैं तेरी सना जैसे तेरा हक है मैं बयान ही नहीं कर सकता, या अल्लाह मैं नहीं बयान कर सकता। और वो जो मशहूर हदीस है कि फरिश्तों की कुछ अकसाम ऐसी हैं जो अल्लाह ताला के आगे सजदे में पड़े हुए हैं जब तक, जब से वो पैदा हुए ना वो वैसे ही हैं, उन्होंने कभी सर नहीं उठाया। अल्लाह के कुछ फरिश्ते रुकू की हालत में ही हैं, जब से अल्लाह ने उनको पैदा किया रुकू में सर रखे हुए और कभी नहीं उठाया, कोई कयाम में खड़े हुए हैं कोई कुछ, और कयामत जब आएगी तो तब वो कहेंगे, हालांकि वो सारा वक्त इसी हालत में रहे जब से पैदा हुए, तो कयामत आएगी तो तब कहेंगे ए बारी ताला तू पाक है हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया, सुभान अल्लाह। जबकि ना वो खाते हैं ना पीते हैं ना कोई और उनको काम है, उनकी कोई हाजतें नहीं है, बस वो उसी के अंदर है, ना बातें करते हैं इधर उधर एक दूसरे के साथ ना कुछ, वो बस उसी पोजीशन के अंदर, तब भी वो कहते हैं। और इंसान कितना जुल्म करता है जब वो अल्लाह के साथ शरीक कर देता है, जो एक्टिविटी भी इबादत कहलाती है ना वो किसी और के लिए नहीं करनी, जो एक्टिविटी जो एहसास इबादत कहलाता है, जो बात इबादत कहलाती है, जैसे एहसास है मोहब्बत का एहसास है कि शदीद मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए हो वो इबादत है, तो फिर अल्लाह का हक दूसरों को कैसे दे सकते हैं, कैसे कोई और ऊपर हो सकता है चाहे वो कोई औलाद ही क्यों ना हो, पर इबादत पूरी जिंदगी को अपनी लपेट में ले लेती है। इबादत बिछ जाने का नाम, झुक जाने का नाम है, किसी को अपनी यादों में बसा लेने का नाम है। हम कहते हैं हम अल्लाह की इबादत करते, हम वैसे नहीं करते जैसे करनी चाहिए, जिंदगी के हर मामले में हर गोशे में अपनी आजादी छोड़ के, अपनी अथॉरिटी छोड़ के, अपनी पसंद और नापसंद को छोड़ के अल्लाह की मर्जी के ताबे हो जाना ये इबादत है, जिंदगी में अपने आप को सरेंडर कर देना इबादत है, हथियार डाल देना कि मेरे पास कुछ नहीं इख्तियार, मैं इख्तियार होते हुए अपने आप को बेइख्तियार कर लेना है, अल्लाह मेरे पास इख्तियार है कि मैं ये गुनाह करूं, तूने मुझे इख्तियार दिया लेकिन मैं अपने आप को बेइख्तियार करती हूँ जैसे मेरे पास इख्तियार ही नहीं, अपने हाथ पैर तोड़ लेना कि मैं गुनाह के आगे अपने हाथ पैर तोड़ लेती हूँ मैं नहीं ये गुनाह कर सकती, ये इबादत है। तो ये सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, किसी और के लिए नहीं, तो वो मालिक है कोई और मालिक नहीं, वो ओनर है हर चीज का, ओनर ओनर समझते हैं ना, कोई और ओनर है ही नहीं है। और किसी और की अथॉरिटी नहीं, वो अथॉरिटी नहीं रखते, अथॉरिटी सिर्फ अल्लाह के पास है, ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है, जिसको चाहे दे जिसको चाहे ना दे। अब क्या इसके अंदर कौन सी ऐसी मुश्किल बात है जो समझ नहीं आ रही हो, बताएं कौन सी ऐसी बात है, फिर भी अगर हमारे अकीदे ही सही नहीं है क्यों,
इसलिए कि अकीदा कुरान से सही होता है और कुरान की तरह हमने आना नहीं, कुरान से जुड़ना नहीं, कुरान को पढ़ना ही नहीं। इसीलिए तो आज जहालत इतनी है, इसीलिए तो इतनी तकलीफ होती है ना मुझे जब मुझे कोई ऐसे वीडियो भेजता है जिसके अंदर कोई किसी इंसान एक खड़ा हुआ है और वो उसके आगे झुक रहे हैं और उसके आगे सजदे कर रहे हैं और फिर उसको हाल चढ़ जाता है और वो पता नहीं वो फिर क्या पता नहीं वो प्रिटेंड कर रहा है कि मेरे ऊपर कोई वही आ गई, फिर वो गोल घूमना शुरू हो जाता है, फिर उसको लोग चारों तरफ से घेरे में ले लेते हैं, फिर कोई बैठा हुआ वो ऐसी ऐसी बातें करता है और ऐसी ऐसी वो कर रहा है और लोग दीवाने हुए जा रहे हैं उसकी बातों पर, वो पूरी शिर्क की यानी शिर्क में डूबी हुई सारी बातें, सरीहन शिर्क। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन्नी ला अमली कुल नफ्सी नफा मुला दर, आया नबी आप कह दें इनसे मैं अपनी जान के पर ना किसी नफा का ना नुकसान का कोई इख्तियार ही नहीं रखता, और किससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती, फिर भी नहीं समझ आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के भी कोई और हस्ती है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये कुरान में फरमा दे ए नबी आप कह दें कि मैं नहीं इख्तियार रखता, अगर मैं इख्तियार रखता होता तो मैं अपने लिए बहुत सारी खैर इकट्ठी कर लेता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कितनी तकलीफें, इख्तियार रखते होते तो उन तकलीफों को ना आने देते, नहीं इख्तियार था, समझ नहीं आती ये बात। लेकिन उनको अपने लिए तो इख्तियार नहीं था, आप लोगों के लिए इख्तियार है कि वो आपकी हर बिगड़ी बना दे, आपकी हर मुश्किल आसान कर दे, फिर खुदा का काम ही क्या रह जाता, फिर तो ये बुत बनाए हैं, ये खुदा है, फिर ये काम तो अल्लाह के हाथ में, ये काम किसी और के हाथ में सोच लिए, इसको इसके ऊपर ईमान रख लिया कि ये भी कुछ कर सकते हैं, तो और शिर्क क्या है बताएं फिर। पर वो हम मुसलमान भी बने रहते हैं, साथ शिर्क का भी कारोबार जारी है। आपके मुल्क में कभी भी इतने अड्डे ना होते शिर्क के, अगर वाकई लोगों की कुरान को समझ लिया होता। जगह जगह देखें ऐसे लोग बैठे हैं, उनकी भी दुकानें इसीलिए चलती हैं क्योंकि जहालत इतनी ज्यादा है, क्योंकि कुरान का इल्म ही नहीं। इतनी बात को मुझे बताएं मैं ना भी एक्सप्लेन करूं, कौन सी ऐसी इसमें चीज है कि जो समझ ना आने वाली बात, इतनी सिंपल बात नहीं समझ आती। अल्लाहु अकबर, फला तदरिबू लिल्लाह अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें ना बयान करो, यानी ऐसी मिसालें जैसी अपने लिए करते हो, जैसे कि हमें औलाद चाहिए तो पता नहीं अल्लाह को भी औलाद चाहिए तो उसके लिए भी औलाद बताना शुरू कर, जैसे जी हमें सिफारशी चाहिए होता है कोई काम कराने के लिए, हम किसी बड़े अफसर के पास पहुंचना है, कई लोगों को आपने देखा होगा ये मिसालें देते हैं, लेकिन जी हम बड़े अफसर तक पहुंचना होता है आखिर तो उसके सेक्रेटरी से मिलना होता है ना, तो उसको खुश करते हैं तो वो बड़े अफसर तक लेकर जाते हैं, आखिर कहीं ऊंची जगह पहुंचना तो सीढ़ी लगानी पड़ती है, ये मैंने लोगों के मुंह से सुना। तो इसी तरह हम अल्लाह के लिए भी ये सीढ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, इन औलिया अल्लाह के पास जाते हैं, यही हमें अल्लाह तक पहुंचाते हैं। तो मुशरिकीन मक्का भी तो यही कहते थे हम इस काबिल कहाँ है कि हम अल्लाह की इबादत करें, हम तो इनकी कर लेते हैं, तो ये अल्लाह के हमारे आगे खुद ही छुड़वा देंगे अल्लाह के आगे। अल्लाह हु अकबर, तो अल्लाह के लिए वो मिसालें ना बयान करो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे जैसा थोड़ी है, वो तो लैसा का मिसली शय, उसके जैसा तो कोई है ही नहीं, उसकी मिसाल है ही नहीं कोई, तो उसकी मिसाल ही नहीं दी जा सकती, वो यकता है, वो असमद है, वो आहद है, उस जैसा कोई नहीं, तुमने अपने जैसा बना लिया, वो तो समी और बसीर और अलीम और खबीर है, उस तक पहुंचने के लिए क्या कुछ और, वो जो अफसर बैठा हुआ उसको तो पता ही नहीं कि तुम बाहर खड़े हो, उसको पता ही नहीं तुम्हारा क्या मसला है, इसलिए तुम्हें एक इंसान की जरूरत है, वो भी तुम्हारे जैसा इंसान है, इसलिए वो तो समझ आती है। अल्लाह को भी तुमने उस अफसर की तरह समझ लिया, उस इंसान की तरह समझ लिया जिसको बाहर की चीज का पता नहीं, वो दीवार के पीछे उसको ये नहीं पता दीवार के आगे क्या है, उसको नहीं पता आप दरवाजे के बाहर खड़े हैं। अल्लाह ताला के तो ऐसी मोहताजी नहीं, अल्लाह ताला तो ऐसा कमजोर नहीं, तुमने अल्लाह को इंसानों के बराबर कर दी। इन अल्लाह यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते, अल्लाह ताला जानता है, उसको ना औलाद की जरूरत, ना उसको कोई किसी की मोहताजी, ना उस तक पहुंचने के लिए किसी जरूरत, तुम्हें नहीं पता। अल्लाह वो है जिसको ना नींद आती है ना ऊंग आती, ना वक्त की कैद उसके लिए, ना जगह की, ना कोई जमान और मकान की, किसी जमाने में भी किसी जगह पे भी। उजीब दावत दाइजा दान, मैं जवाब देता हूं, मैं पुकारने वाले की पुकार का सुनता हूं, उसको जवाब देता हूं जब वो मुझे पुकारता है, उसके लिए तुम मिसालें बयान करने लग जाते।
और गैर अल्लाह की बंदगी के लिए इसको दलील बनाते हैं। देखो हम तो इसलिए इनकी बंदगी करते हैं क्योंकि देखें वो अल्लाह तक पहुंचाते हैं, तो उनकी यानी इबादत करने के लिए ना अल्लाह की मिसालें देते कि भाई नहीं तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए भी तो हम ये कर रहे हैं। दरब अल्लाहु मसलन, अब एक और मिसाल दी गई, देखो इस मिसाल से तौहीद को समझो। अब्दन ममलूकन, एक गुलाम है जो ममलूक है किसी, कोई उसका मालिक है। अब देखो जो एक गुलाम है उसके तो कोई इख्तियार ही नहीं होता, उसको अपनी जिंदगी तक का इख्तियार नहीं होता। कैन यू इमेजिन, उसकी जिंदगी भी उसकी नहीं होती, वो उसके मालिक की होती, चाहे मार दे उसको, शूट कर दे, कोई उसको पूछने वाला नहीं होता। इसीलिए देखें जब लोग इस्लाम लेकर आए मक्का में तो कितने लौंडी गुलामों को अगर मार दिया जाता था टॉर्चर कर करके, तो कोई अदालत नहीं थी जो इनको पकड़ती, क्योंकि तो लौंडी गुलाम उनका खाना पीना उनकी जिंदगी सब उसका इख्तियार उनके मालिक को था। उसकी गुलाम कमाई भी करके लगेगा वो भी उसके मालिक की। तो एक गुलाम है ममलूक है, ला यकदिरु अला शैइन, वो उसी चीज पे कादिर ही नहीं है, कोई चीज उसके हाथ में नहीं है। वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, और कोई ऐसा है जिसको हमने रिस्क दिया अपनी तरफ से अच्छा रिस्क, फहुवा युन्फिकु मिन्हु सिर्रन व जहरा, तो उसमें से खर्च करता है खुले छुपे, यानी उसको इख्तियार है, वो पावर में है, उसको हमने रिस्क दिया है और उसको ये इख्तियार है वो जहां चाहे खर्च करे, चाहे वो छुपा के करे, चाहे वो एलानिया करे। तो बताओ हल यस्तवून, क्या वो दोनों बराबर हो सकती है? एक है देखिए गुलाम है बगैर इख्तियार के, दो कैरेक्टर बताए गए ना, दूसरा है उसके पास जितना भी इख्तियार है सब चीजों को, उसकी मिल्कियत भी है और वो जिधर चाहे वो खर्च करे, उसको कोई पूछने वाला नहीं, चाहे छुपा के दे चाहे जाहिर में दे, क्या दोनों बराबर है? सोचें जहन ना, नहीं है बराबर ना, इसलिए कि एक के पास अथॉरिटी है दूसरे के पास कोई अथॉरिटी नहीं। एक खर्च कर सकता है दूसरा तो खर्च ही नहीं कर सकता, उसके पास तो कुछ भी नहीं, उसकी तो जान भी अपनी नहीं है, एक अता करने वाला है और दूसरा वो कुछ इख्तियार ही नहीं रखता कि किसी को भी कुछ दे सके। तो ये बताया गया कि देखो अगर ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, जबकि तुम इनको समझते ये एक जैसे ही इंसान है ना दोनों, ये बराबर नहीं हो सकते जो दोनों इंसान है, इनको भी तुम बराबर नहीं कहते, तो अल्लाह ताला को कैसे तुम बराबर कर देते हो मखलूक के, या मखलूक को अल्लाह के बराबर कैसे कर देते हो? कैसे तुम मखलूक को भी कहते हो कि हाँ ये भी हो जाओ, कि वो मखलूक तो बेइख्तियार है और अल्लाह ताला के पास तो सारा इख्तियार है। तुम इस बेइख्तियार मखलूक को बता दिया गया कि आसमानों और जमीन में किसी चीज की भी मिल्कियत इनकी नहीं, ये नहीं है मालिक, हर चीज अल्लाह की मिल्कियत में, फिर तुम इनको कैसे अल्लाह के बराबर करते हो? अल्लाह अकबर, वो रब जिसकी रहमत जिसकी अता बेहिसाब है, जिसकी रहमत के 100 दर्जे हैं और 100 हिस्से हैं और 100 हिस्से किए तो एक हिस्सा सिर्फ दुनिया में उतारा उसकी रहमत का, जिसकी वजह से कोई भी किसी के ऊपर रहम करता है, 99 हिस्से उसके पास है, लेकिन लोग इस बात को समझते ही नहीं, एक एक जरा जरा हिस्सा किसी को मिला हुआ जिसकी वजह से दूसरे पे रहम कर रहे हैं, माँ बच्चे को देखती है, फिर भी हम अल्लाह ताला से भी ज्यादा बड़े रहमदिल बन जाते हैं जब हम कहते हैं अल्लाह ने फलां को क्यों नहीं ये दिया, उसको क्यों नहीं ये नेमत दी, उसको अंधा क्यों बना दिया, उनको भूखा क्यों छोड़ा, वो उसको मरने क्यों दिया, उसके छोटे छोटे बच्चे थे उसको क्यों नहीं बचाया, इस औरत की इज्जत लूटी गई उसको क्यों नहीं अल्लाह ने बचाया, उस वक्त अल्लाह कहां था, इस तरह की बातें करते तुम्हें अंदर ज्यादा रहम, अल्लाह से भी ज्यादा रहम, 99 हिस्से उसके पास है, ये सोचते हैं कि सारे हमारे पास है। तो कुरान बता रहा है, दुहाइयां दे दे के बता रहा है, आवाजें दे रहा है, हमें समझा रहा है, कोई जानने वाला है, कोई समझने वाला है इस बात को कि कभी मखलूक खालिद के बराबर नहीं हो सकती, हुआ रज़ाक, वो रिस्क देने वाला है, जी कुव्वत अल-मतीन, वो कुव्वतों वाला है, मजबूत निगेबान है, बराबर नहीं हो सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सारी तारीफ तो अल्लाह ही के लिए, सारा शुक्र उसके लिए। मैंने क्या बताया, अल्हम्द जो होती है ना, हम्द के अंदर तारीफ भी होती है और शुक्र भी होता है, ये शुक्र कभी कलमे और तारीफ कभी, पर अक्सर ला आलम, लेकिन अक्सर लोगों को समझ नहीं आती, नहीं समझ, ला इल्म है, जाहिल है, इसलिए ये आज दुनिया के अंदर कितना कुफर और शिर्क है। अल्लाह को छोड़ छोड़ के बेख्तियार मखलूक की तरफ दौड़े जा रहे हैं। कोई कब्र पे बैठ गया जाके, कोई बुत लेके बैठ गया है, कोई कोई किसी चीज को पूज रहा है, कोई किसी चीज को पूज रहा है, कोई सूरज को पूजने शुरू हो गया, कोई चांद को, कोई सितारों को, कोई मखलूक छोड़ी भी है बेख्तियार चीजों को। और दरब अल्लाहु मसल रजुलैन, अब एक और मिसाल बयान की दो आदमियों की, आहदुहुमा अबकम ला यकदिरु अला शय। देखिए अब हर जगह ना ऐसी मिसाल दी जा रही है, ये जो मिसालें हैं ना इनको मुसरी ने डिफरेंट डिफरेंट तरह अप्लाई किया है। बाज जगह का है देखिए, एक इख्तियार वाला दिखाया गया, एक बे इख्तियार, हर हर एक मिसाल में ऐसे है ना, एक गुलाम है, एक आजाद है, एक देने वाला है, कुछ भी नहीं दे सकता, वो खुद गुलाम है। यहाँ पे भी एक अबकम है जो बिल्कुल ही गूंगा है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं इख्तियार, वह कुल्ल आला मौला, वो कल्ल अला मौला, वो कल है, यानी वो बिल्कुल बोझ है अपने मौला पर, अपने आका पे। ऐनामा युवज्जिहु, जहां उसको भी भेजता है ला याति भी खैर, वो कोई खैर लेकर ही नहीं आता, कोई भलाई लेकर ही नहीं आता, जिधर जाता काम खराब भी करके आता है। वो क्या उसके बराबर हो सकता है? हल यस्तवी हुआ ममन मन या अमरु बिल अदल, उसके बराबर हो सकता है जो अदल के साथ फैसले करने वाला, जिसको समझ है, जिसको सूझ है, जिसको अकल है, जो अदल के साथ बात करता है, बहु अला सिरात मुस्तकीम, और वो सीधे रास्ते पर। एक तो बिल्कुल ही अकल ही नहीं, वो जिधर जाता है उधर ही काम खराब करता है, एक है जो सिरात मुस्तकीम पे, दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? एक है जो गूंगा है, उसको समझ ही नहीं, दूसरा है जो होश वाला है, उसको अकल समझ है, बराबर होंगे क्या? यानी हर जगह ऐसा कंपैरिजन दिखाया गया ना। तो इमाम शौकानी ने इन मिसालों से जो इम्प्लीकेशंस दी हैं, उनने कहा है कि ये जो गुलाम और आजाद की मिसालें हैं ना, या ये गूंगे की और एक बंदा है जो इख्तियार रखता है, या सिराते मुस्तकबे, या तो ये है कि माबूदाने बातिल और मखलूक की मिसाल है, यानी एक बुत है या जिसको भी लोग पूजते हैं, और एक मखलूक है कि तुम तो अच्छे भले हो, तुम तो देख सुन सकते हो, तुम तो आजाद हो, तुम ऐसों की जाके पूजा कर रहे हो जो कि बिल्कुल ही बेइख्तियार है, दुनिया से चले गए या बुत हैं या कुछ है, वो बिल्कुल ही बेइख्तियार है, उनकी जाके पूजा करते हो, तुम अच्छे भले इख्तियार वाले हो कि ये काम कर रहे हैं। दूसरा वो कहते हैं हो सकता है ये काफिर और मोमिन की मिसाल हो, एक काफिर है वो बिल्कुल ही जैसे गूंगा होता है, कोई वो उसके अंदर कोई खैर नहीं, कहीं से खैर नहीं आता, उल्टा बोझ ही है वो, कल्लुन है, और दूसरा जो कि सिराते मुस्तकीम पे है वो मोमिन है। और वो कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि ये खालिक और मखलूक की मिसाल है, एक खालिक है, खालिक और मखलूक के अंदर बड़ा फर्क है, जैसे तुम्हारे ऐसे दो लोग बराबर नहीं हो सकते, इस तरह खालिक और मखलूक भी बराबर नहीं हो सकते, बल्कि उनका तो फर्क बहुत ही ज्यादा है, ये तो फिर भी तुम जैसे दो एक जैसे इंसान ही होंगे, चलो अगर गूंगा बहरा भी हो तब भी इंसान ही है ना, लेकिन ये बात समझ नहीं आती लोगों को, क्योंकि लोग इल्म नहीं रखते, अक्सर हम ला आलम इल्म नहीं रखते, सारा इख्तियार अल्लाह के पास, बोल के भी कि हम मुसलमान है फिर भी इल्म नहीं, फिर भी शिर्क में पड़ेंगे। वलिल्लाहि गैबु समावाति वल अर्ज, अब अल्लाह ताला के इख्तियारात उसकी कुदरतों की एक और निशानी बताई गई, क्या कि अल्लाह ही के पास है, अल्लाह ही के लिए है। लिल्लाह जब आ जाता है ना शुरू में तो इसको मीनिंग को कन्फाइन कर देता है कि अल्लाह ही के लिए है, किसी और के लिए नहीं है, यानी अगर होता ना गैबु समावाति वल अर्ज लिल्लाह, तो आसमान और जमीन का गैब अल्लाह के लिए है, तो इसका मतलब ये था कि किसी और के लिए भी चलो हो सकता है, थोड़ा किसी और के पास नहीं, लिल्लाह ही, सिर्फ अल्लाह ही के लिए आसमान और जमीन का गैब। गैब क्या होता है? वो जो इंसान की सेंसेस से गायब हो, हवास में आपके नहीं आ सकता और ना ही अकल से पता चल सकता है, वो सब गैब है, जैसे फरिश्ते, जैसे जन्नत, जैसे जहन्नम, जैसे कब्र की जिंदगी, बरजख की जिंदगी, वो भी एक जिंदगी है ना, जैसे इल्लीकीन, जैसे सिज्जीन, जैसे आसमान के जो दरवाजे हैं, फरिश्ते हैं आसमानों में, जो गैब की बातें हैं, ये सारी गैब है, तकदीर गैब है, ये सब गैब जो है ना ये अल्लाह ही के पास है, यानी क्या अल्लाह ही के इख्तियार में है, अल्लाह ही इनका मालिक है, उसके लिए कोई चीज गायब नहीं है, ये हमारे लिए गायब है ना, हमें नहीं, हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना इनके बारे में सोच सकते हैं, तसव्वुर में हमारे नहीं आ सकती, लेकिन ये अल्लाह के लिए गायब नहीं है कुछ भी, ना फ्यूचर को हम जान सकते हैं, वो भी हमारे लिए गायब है, सब चीजें हमारे लिए गायब है, अल्लाह ताला के लिए कोई चीज गायब है ही नहीं, कोई चीज गायब नहीं। और गायब में एक बहुत बड़ा गायब जो है ना, वो है कयामत कब आएगी। फ्यूचर का जो फ्यूचर सारा ही गायब है, लेकिन एक बहुत बड़ा गायब जिसका किसी को भी नहीं पता, किसी फरिश्ते को भी नहीं पता, वो है कयामत की आने का इल्म। इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता था। वमा अमरु साती इल्ला कलम्हिल बसर अव हुवा अक्रब। और ये जो साथ का इल्म है ना, ये जो कयामत का इल्म है, ये बस एक पलक झपकने को होगा या इससे भी करीब, यानी अल्लाह ताला के इख्तियार को ऐसे ही ना समझो, मामूली ना समझो, अल्लाह ताला की पावर को ऐसे ही तुम अपनी किसी बंदे की पावर जैसा ना समझो, ये पूरी कायनात को तहस नहस कर देना। कयामत क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग, इवन सूरज चांद सितारे, तीसवें पारे को उठा के देख ले कैसे, अल्लाह अकबर, सूरज बेनूर, तारे टूट टूट के गिरने लगेंगे, समंदरों में कैसे आग लग जाएगी, कैसे हर तरफ एक हलचल मच जाएगी, एक केओस, एक खत्म हर चीज, जमीन की हालत क्या होगी, वो कैसे फटने लगी, ये सब अल्लाह ताला के लिए कितनी देर का काम है, कलम हिल बस। और इतना बड़ा तूफान, इतनी बड़ी कयामत, ऐसी साथ कि हर चीज मिट जाए, वो इतनी सी बस पलक झपकने की देर की बात है उसके लिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अल्लाह ताला इरादा फरमाता है तो उसका बस इरादा फरमाना ही काफी है। ये जो कुन का लफ्ज है, ये हमारे समझने के लिए, क्योंकि हमारे, या ये लम्हिल बसर है ना, लम्हिल बसर, ये भी हमारे समझने के लिए, क्योंकि किसी चीज की भी तेजी को हम कैसे समझते हैं, हम कोई चीज बहुत जल्दी हो जाए तो क्या कहते हैं, बस पलक झपकने में मैं ये काम कर दूंगी, कहते हैं ना पलक झपकने में ये काम हो जाएगा, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, ऐसे बोलते हैं। तो हमारे लिए जो बहुत जल्दी किसी चीज के लिए ना ये वर्ड्स बोले जाते हैं, हमारे लिए इससे ज्यादा तेजी का कोई वर्ड है ही नहीं है, समझाइए कि ऐसे मैंने पलक झपकी, ये हम, मुझे लगता है कि ये बहुत तेजी है, इससे ज्यादा तेजी मुझे नहीं समझ आती कि कोई चीज हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ इससे भी ज्यादा तेजी का है, औ हुवा अक़रब, पलक झपकने से भी ज्यादा तेजी हो सकती है कोई चीज, ये मैं नहीं सोच सकती क्योंकि मैं एक इंसान हूं, लेकिन अल्लाह के हाँ पलक झपकने से भी ज्यादा तेजी से काम हो जाता है। सेकंड का एक हिस्सा लगता है पलक को झपकने में, सेकंड का एक हिस्सा, और कुन कहने में भी सेकंड का एक हिस्सा लगता है, चलो सेकंड लगता है कुन कहने में, अल्लाह ताला को इतना भी वक्त नहीं लगता, सिर्फ इंसान को समझाने के लिए उसकी जुबान में ये बात कही गई कि कलम हिल बसर, के तुम्हें समझ आ जाए, वरना लम हिल बसर से भी ज्यादा जल्दी, तो जल्दी की पता नहीं कितनी इंतहा होगी, जो हमारे तसव्वुर में आ ही नहीं सकती, हमारे दिमाग नहीं ना इतने, हम तो, हमारी एक हद है, हमारी एक लिमिट है समझने की भी, तेजी की भी हमारी एक लिमिट है कि भाई ये तेजी, इसको हम तेजी कहते हैं, बहुत जल्दी कहते हैं, इससे भी ज्यादा जल्दी। अल्लाह, इंसान तेरी तो जहां इंतहा हो जाती है ना, वहां तो अल्लाह ताला के इख्तियार की इब्तिदा होती है, क्या समझता है अपने आप को, तेरी तो इंतहा जहां हो गई, वहां पे अल्लाह का इख्तियार अभी शुरू होता है, तुम तो समझ नहीं सकते वो कितना पावरफुल है। तो फिर कोई मखलूक उसे ऐसे रब का मुकाबला कर सकती है? इतनी कुदरत जिसके पास हो, इतना इख्तियार जिसके पास हो, कि बस उसका एक इरादा ही काफी है, और कयामत ऐसे तेजी से आ जाएगी कि कोई सोच भी नहीं सकता होगा, हत्ता कि एक बंदे ने लुकमा उठाया होगा ना, तो वो लुकमा मुंह तक लेके जा रहा है, अभी मुंह में डाला नहीं होगा, कयामत आ जाएगी ना तो ये नहीं कर सकेगा कि चलो मैं मुंह में तो डाल लूं वो लुकमा, इतनी सी भी नहीं उसको मोहलत मिलेगी, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। कुल्ली शहीन कदीर के नहीं, इमेजिन द पावर, कुल्ली शहीन जो है ना इसको आप सोच ही नहीं सकते, ये हमारी ना अकल में आ नहीं सकता कि किस किस चीज पे अल्लाह ताला कुदरत रखता है, इसीलिए अल्लाह कुल्ली शहीन कह दिया गया। क्योंकि आप आपको बताया जाए इस पे भी अल्लाह कादिर है, इस पे भी कादिर है, इसके भी कादिर है, चीजें खत्म हो जाएंगी, अल्लाह की कुदरत नहीं खत्म होगी। कुरान में अगर सिर्फ यही लिखा जाता रहता तो फिर आप कुछ और पढ़ ही ना सकते, अल्लाह ताला किस किस चीज पे कादिर है, हमारी अकल से बियॉन्ड है वो सब, इसलिए अल्लाह कुल्ली शहीन कदीर। जब इन बात को पढ़े कि इन अल्लाह अला कुल्ली शहीन कदीर, तो आपका दिल उसके रोब से और उसकी अजमत से भर जाना चाहिए कि अल्लाह तुम हर चीज पर कादिर है, जो रब हर चीज पर कादिर है तो मेरे मसले क्या है फिर उसके आगे, जो हर चीज पर कादिर है तो मेरी मुश्किल क्या है उसके आगे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और मेरी हस्ती क्या है, और मेरे छोटे छोटे ये काम क्या है, और मेरी ये भाग दौड़े क्या है, कुछ भी नहीं। मेरे प्रॉब्लम्स, मेरी ये जो परेशानियां, मेरी जो जो सारी फिक्रात है, ये तो कुछ भी नहीं। अल्लाह तो हर चीज पर कादिर, इसको जहन में ला के दुआएं किया करें, उसके लिए क्या मुश्किल, वो तो कलम हिल बसर में काम कर सकता है, और वो आकर अभी हम उससे भी ज्यादा कम वक्त जिसका मैं नहीं तसव्वुर कर सकती, फिर भी ऐसे रब को छोड़ के दूसरों की तरफ भागना, उनसे उम्मीदें रखना, वो हमारे कामों को आसान करेंगे, जो रब ब्लिंक ऑफ एन आई में काम कर सकता है, उससे भी ज्यादा तेजी में, तेजी से मेरे हालात को बदल सकता है, फिर किसी और के पास जाओ। अल्लाह अकबर, तौहीद, इट्स व्हाट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ तौहीद इस सूरह के अंदर जो है ना, तौहीद को इतने जबरदस्त तरीके से कि इंसान इसकी डेप्थ में जाए ना, आपका दिल भर जाएगा अल्लाह की अजमत से। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैया, पहले ब्राजील बुढ़ापे का बताया गया कि तुम ऐसे उसमें पहुंच जाते हो कि तुम्हें कुछ इल्म नहीं रहता, और अब अपनी इब्तदा पे भी तो जरा गौर करो कि तुम क्या थे, तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं था, तुम अपनी माओ के पेटों से अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, क्या अंधेरे में थे, माँ का अपना बस नहीं था कि इसको कुछ करे, इसको उल्टे पुलटे इस तक खुराक पहुंचाए, इसको सही बना दे, कैसा कर दे इसको, ये इसकी शक्ल ऐसी कर दे, या इसकी अकल ऐसी कर दे, या इसके आजा ऐसे बना दे, कुछ भी उसके इख्तियार में नहीं। और पैदा होते हो तो कुछ पता ही नहीं है, इवन आप इमेजिन करें ये जो जितने हैवानात है ना, इनके बच्चे भी कुछ ना कुछ पावर रखते हैं जब पैदा होते हैं। आप गाय के बच्चे को देखें, आप बच्चा देती है ना, तो थोड़ी देर में ही वो बच्चा उठ के ना भागता है माँ के थनों की तरफ दूध पीने के लिए। और भी मखलूकात के आप बच्चे देखें, वो उठ के ना कुछ अपना कुछ इधर उधर मुंह मारने लगते हैं, लेकिन इंसान का बच्चा इतना बेबस होता है ना, इतना बेबस होता है, उसको सिवाय रोने के कुछ करना ही नहीं आता, रोने के हाथ पैर मारता रहता, बस उठ के चल नहीं सकता जाके कुछ अपना खाने का इंतजाम कर ले, बोल नहीं सकता कि बता सके मुझे तकलीफ है कि मुझे क्या है, या मुझे भूख है, या डायपर चेंज करना है, कुछ भी नहीं बता सकता, कुछ भी उसकी यानी इतनी बेबसी और मोहताजी है, मोहताजी की तस्वीर होता है वो। तब ऐसी उस इंसान को जो ऐसा मोहताज है, उसको अल्लाह ताला समात वाला, बसारत वाला बना देता है, वजाल लकुम समा वाला बसारा वाल अफ़ीदा, तुम्हें कान भी दिए, आंखें भी दी, दिल भी दे दिए कि सोचो समझो, सिर्फ देखो सुनो नहीं, सोचो दिल के साथ, दिल के साथ, जिसको हमने कहा ना कि सिर्फ सुनना नहीं है, दिल के साथ सुनना है। किस लिए, किस लिए, ताकि तुम अपने काम कर सको, मजे कर सको, ताकि तुम देखे ना फिल्में देखनी है, कानों से कुछ म्यूजिक सुनना है, और दिल है वो अभी के कोई मर्द है तो किसी लड़की के पीछे, कोई लड़की है तो किसी लड़के के पीछे, बस इनकी मोहब्बत, या फिर और जरा बड़े हो गए तो और चीजों की मोहब्बत, इसके लिए दिल बना, मेरा दिल तो है ही तेरे लिए, मेरा दिल तेरे काबिल, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत, पता नहीं क्या क्या शेर है। अच्छा तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तो मैंने इसलिए दिए ताकि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मेरे आगे झुक जाओ, इस नेमत को पा के नेमत देने वाले को याद रखो, बीच बीच जाओ एहसान मंदी करो, ये मेरा मेरे ऊपर ये एहसान करने वाला मेरा रब है, तुम उसके आगे अपना सर झुका दो, सरे तस्लीम खम कर दो, सर ना उठाओ उसके आगे। बगावत का तो किसी तरह से भी नहीं, कोई कोई नुक्ता निकल ही नहीं सकता ऐसे रब के सामने। और इंसान का हाल क्या होता है, माओं के पेटों से जो निकालने वाला, कि अंधेरों के अंदर तुम पड़े थे वहां तुम्हारी तखलीक करने वाला, वो तुम्हें अंधा ही कर देता, कोई जरूरत ही तुम्हें, तुमने निकल के भी तो उसकी नाफरमानी ही करनी थी, वो तुम्हें ऐसे बना देता कि अकल समझ काम ही ना करती, जैसे पैदा हुए थे वैसे ही रहते। ऐसे देखिए ऐसे बच्चे होते हैं, अल्लाह माफ करे, पैदा होते हैं उसके बाद कुछ ऐसे मसाइल हो जाते हैं, दिमाग ही नहीं काम करता, सारी जिंदगी नहीं दिमाग काम करता, उसी तरह लाइल्म होते हैं जैसे बेबी थे। तो अल्लाह ताला ऐसा भी रख सकता, तुम्हें तो अकल दे दी, समझ दे दी, आंख और कान दे दिए, तुमने ना आंखों से अल्लाह की निशानियों को देखो, उसको पहचानो, उसका शुक्र अदा करो, वो शुक्र शुक्र का ही कहता है ना तुम्हें, और क्या कहता है, तो शुक्र भी नहीं अदा कर सकते। और शुक्र जो होता है सिर्फ जुबान से नहीं होता, पूरी जिंदगी जो होती है ना वो शुक्र वाली जिंदगी होती है, एक जिंदगी ना शुक्री वाली होती है और एक शुक्र वाली जिंदगी होती है, ये जिंदगियां होती हैं, ये सिर्फ जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं होता, तस्बीह पढ़ लेना नहीं होता, अमल में ना फरमानी करना और तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह की पढ़ना, ये तो शुक्र वाली जिंदगी नहीं है। तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह की पढ़ना और अल्लाह ताला के जो रास्ता है उसको छोड़ के दूसरों के रास्ते पे चलना, ये शुक्रगुजारी वाली जिंदगी तो नहीं है। समातें दी भी उसी की हैं और सुनना इससे हर वो चीज जो उसकी नाफरमानी की है और जो उसको खुश करने वाली चीजें, वो कभी समात में जाए ही ना, ये शुक्रगुजारी तो नहीं, तो ना शुक्री है। आंखें उसने दी, वो आंखें हर चीज देखे लेकिन उसकी निशानियों को ही ना देखे, तो ये शुक्रगुजारी नहीं, ये ना शुक्री है। ये जिसम अता किया हुआ उसी का है, इस जिसम से सारे ही काम ले लिए और उसके आगे रुकू सजदे करने खड़े ना हुए, तो ये शुक्रगुजारी नहीं है, ना शुक्री। अता करने वाला अगर इन चीजों को फना कर दे, खत्म कर दे, वापिस ले ले, तो उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं, फिर भी वो अता किए रखता है, दिए रखता है, चाहे तुम उसकी शुक्रगुजारी करते हो या नहीं। अगर आप शुक्र वाली जिंदगी नहीं गुजार रहे ना, तो आपकी जिंदगी ना शुक्री वाली है, आइदर शुक्र वाली जिंदगी होगी या ना शुक्री, नीच वाली कोई नहीं होती। शुक्र वाली जिंदगी है ही वो जिसमें हर नेमत जो उस रब ने दी हुई है वो उसकी मर्जी से इस्तेमाल हो और उसके रास्ते में इस्तेमाल हो, उसकी नाफरमानी में ना इस्तेमाल हो। जो चीज भी उसकी नाफरमानी में इस्तेमाल होगी उसकी नाशुक्री कर रहे हैं हम, वो शुक्रगुजारी नहीं है। तो याद रखिए, शुक्रगुजारी जो है वो जिंदगी होती है, वो सिर्फ तस्बीह नहीं होती, इस बात को जहन में रखें। जिंदगी शुक्रगुजारी वाली गुजारनी है, बस एक ये वो कोई तोते की तरह नहीं, ये बस तोता जो उसको अल्हम्दुलिल्लाह सिखा दी वो सारा दिन बोलता रहे, उसी तरह हमने एक रट लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 तस्बीह पढ़ ली, चलो जी कुछ शुक्र बस हो गया, शुक्र इतना ही था, और जिंदगी सारी वही जो मेरी मर्जी है मैं वही करूंगी, मेरा दिल यही करता है, मैं नहीं किसी की मानती, मेरी जिंदगी मेरा मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा घर मेरी मर्जी, सारा कुछ अपनी मर्जियां करनी और तस्बीहां अल्हम्दुलिल्लाह की चल रही, ये कौन सी शुक्रगुजारी है। आंखों को कभी फुर्सत नहीं कि कुरान पढ़े, कानों को कभी फुर्सत नहीं कि कुरान सुने, बाकी सब चीजें सुन रहे हैं, इसका टाइम नहीं है, तो ये शुक्रगुजारी हो रही। दिल में उसकी मोहब्बत ही नहीं है, सारी और मोहब्बतें हैं, बच्चों की भी मोहब्बत, घरों की भी मोहब्बत, पैसे की भी मोहब्बत, हर मोहब्बत है दिल में, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत उसको पहचानते नहीं, उसकी मोहब्बत क्या होगी। वैसे बहुत बातें करते हैं, हमें तो रसूल से मोहब्बत, हम आशिक रसूल, हम अल्लाह की महबूब, हम फलां, हम ये, तो हम तो ये करने वाले, हम वो करने वाले, दिल मोहब्बतों से खाली, ये कौन सी शुक्रगुजारी।
तो ना शुक्री वाले रवैये अल्लाह को पसंद नहीं, ना शुक्री वाले जिंदगी अल्लाह को पसंद नहीं। शुक्र गुजार बन जाइए, शुक्र गुजारी वाली जिंदगी की तरफ आइए। देखो उसने कैसे तुम्हें माओ के पेट से पैदा किया, किधर थे तुम, किस कैद खाने में थे, किन अंधेरों के अंदर थे, तीन अंधेरों में तुम्हें बनाया और माँ से निकाला। चाहता था तुम्हें मुर्दा निकालता माँ के पेट से, जिंदगी दे दी तुम्हें, तुम कुछ नहीं जानते थे, तुम्हें इल्म दे दिया। अब बड़ी बड़बड़ के बातें करते हो, अब बड़े देखते हो, सुनते हो, बोलते हो। एक तो वो भी दिन था तुम्हें कुछ पता ही नहीं था, और हम सब उससे गुजरे हैं। हम सब कोई इस तरह में तो नहीं हमेशा से बन के बैठे हुए, हम सब एक दिन बिल्कुल ला इल्म थे, अपने गंद में, अपने डायपर्स के अंदर जो भी था, एक दिन वो भी था ना, और हम सब पे आया है ना। तो आज बन के बड़े बैठ रहे हैं, बड़े इज्जतों वाले और बड़े आलिम और फाजिल और अकल वाली बातें हमें करनी आ गई हैं। तो वो कोई है पीछे जिसने सिखा दी, जिसने कुछ दिया है, तो ये आज बातें हो रही हैं। फिर भी हम अपने ही गुण गाते रहते हैं और उस देने वाले को भूल जाते हैं, और कभी नहीं ये सोचते कि जो नेमते उसने दी है इनको उसके काम में भी लाना, उसकी मर्जी से भी चलाना। अलम यारो, क्या उन्होंने नहीं देखा, इलतर परिंदों की तरफ, चलो परिंदों की तरफ ही देख लो, मुसखरात हैं वो, मुसखर कर दिए गए, यानी काम में लगा दिए गए। कि जब विस्समा, आसमान की फिजा में अल्लाह ताला ने इनको बनाया, इनको जो उनको काम का बनाया था वो अपने काम कर रहे हैं, निजाम के मुताबिक चल रहे हैं, और इनको ये जो सलाहियत दी उड़ने की, इनको ये जो सलाहियत दी फिजाओं में बैलेंस रहने की, मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह, ये कोई नहीं इनको थामे हुए सिवाय अल्लाह के। इनका ये जो थमना है ना कि गिर नहीं पड़ते नीचे, आप बॉल ऊपर उछाले आपकी बॉल नीचे गिर पड़ती है, परिंदा क्यों नहीं गिरता? कभी कभी आप देखते हैं वो पर भी नहीं हिला रहे होते, ऐसे ही इनकी फ्लाइट होती है, किसने उनको थामा हुआ? अवलम यरो इल तैरी फौकम साफ फातिम यकबिल मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान। अल्लाह ताला सूरह मुल्क में फरमाता है इनको रहमान के अलावा किसी ने नहीं थामा। इन फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यु'मिनून, इसमें आयात है, निशानियां उस कौम के लिए जो ईमान रखती है। देखिए मैंने आपको कहा ना कि आपने सोच के बताना है कि कहीं है कौम याकिलून, कौम यफ़क़हून, कौम यु'मिनून, ये क्या हमें बता रहा है, ये क्या हमें समझा रहा है? ये बात हमें ये समझाती है कि जो सबक लेना है ना निशानियों से, इसकी कुव्वत इंसान के अपने अंदर होती है, उसके अपने अंदर कुछ होगा तो तब वो इनसे सबक लेगा। ईमान हो और फिक्र की सलाहियत हो, कुछ सोचने वाला हो, कुछ समझने वाला हो, कुछ अकल रखने वाला हो, तभी निशानियों से वो फायदा भी उठाता है। और अगर नहीं है ये, तो ये निशानियां तो बहुत जगह, हर जगह बिखरी पड़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इनसे गुजरते हैं नहीं फायदा उठाते। तो इसका मतलब है कि निशानियां जो है फायदा सबको नहीं देती, आपके अपने अंदर कुछ होना चाहिए तब वो निशानी आपको फायदा देगी, तब आप उससे सबक ले सकते, अदरवाइज गुजरते ही रहेंगे। तो ये आइदर आपके अंदर ईमान हो, ईमान वाला जो है ना फिर इस तरफ तवज्जो करेगा, ईमान है ना, यकीन है अल्लाह को मानते हैं तो फिर ये नजर आएंगे, अकल है या गौर व फिक्र करने की सलाहियत है तो तब निशानी नजर आएगी। अब देखो ये अब परिंदों के अंदर ही बता दिया गया, परिंदों में गौर व फिक्र कर लो, कैसे वो हवा में उड़ते हैं, कैसे वो कहीं परिंदे सुबहान अल्लाह उनका पता चलता है कि वो पूरे ग्रुप्स में, उनके भी ग्रुप होते हैं, उनके अंदर वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और इतना फासला, इतने मीलों तक का फासला तय करते हैं, उड़ते ही जाते हैं, कभी समुद्रों पर उड़ते जाते हैं। एक परिंदे का आया था यहाँ से किसी स्टेट से, वो उड़ के सुबहान अल्लाह ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, इतनी दूर। तो फिर उन्होंने उसको पकड़ लिया, फिर उन्होंने कहा इसको कोविड के लिए चेक करें, और इस तरह न्यूज में आता। तो कैसे ये उड़े फिरते,
कैसे हवा का प्रेशर होता है, कैसे अल्लाह ताला ने, हम बस यही सोच के चुप कर जाते हैं, हाँ बस ऐसे लॉज हैं, ऐसे वो लॉज हैं, ऐसे वो असूल हैं, ऐसे हवाओं के हैं, ऐसे वो हैं, इनके पास ये पर हैं, ये ऐसे। एक सोचो तो सही, किसने दे दिए ये, किसने सब चीजों को मुआफिक बना दिया कि ये उड़ सके, वो लॉज भी तो किसी ने बनाए हैं, तो कोई तो थाम रहा है इनको। सुभान अल्लाह, तो अप्रिशिएट करने की जरूरत है इन सब चीजों को, देख के अल्लाह ताला की कुदरत को, अल्लाह ताला की अजायबात को। ये सब अजूबे हैं, ये सब मौजज़े हैं, ये सब वो चीजें हैं जिनसे अल्लाह ताला की पहचान होती है। एक एक में गौर करने लगो तो अल्लाह तक पहुंच जाओ। मगर हम सिर्फ अक्सर जाहिरी चीजों को में खो के और उन्हीं के गुण गाते रहते हैं, पीछे रब की जात को नहीं सोचते। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम उसकी निशानियों को देखकर उनसे रब को पहचाने, उसकी निशानियों में गौर व फिक्र की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला इन इस गौर व फिक्र के नतीजे में अपने तक पहुंचा दे और अपनी अजमत और अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه
لا
يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء